Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
वो बोलते देखो जी हम प्रातः काल उठते हैं संध्या वंदन करते हैं हवन करते ये करते आप कुछ नहीं करते हो आप वो जो बैठे थे अपने स्वरूप में जो स्थित हो चुके थे उनको लगा कि इसको तो कुछ समझाना पड़ेगा और इसी के अनुसार इसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही बोले बात यह है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन नहीं करने का जो कारण है क्योंकि जब भी कर्म में प्रवृत्त होंगे तो कर्तापन का भाव आएगा कर्तापन का भाव तब आता है जब लगे कि हमारे आगे पीछे भी कोई है अब जब चिंतन करता हूं विचार करता हूं तो हमारे जीवन में हमेशा ये बोले दो सूतक लगा रहता है उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन मेरे ऊपर जबरदस्त सूतक लगा हुआ है उस सूतक के कारण मैं कुछ कर नहीं पाता हूं बोले वो कैसा सूतक है भाई मृता मोहमयी माता जाता बोधमय सुत सूतकद्वय संप्राप्ते कथम संध्याम उपासमहे बोले एक तो जो है ना मृता मोहमयी माता मेरी माता जी गुजर गई है उसका सूतक लगा हुआ है इसलिए मैं संध्या आदि कैसे करूं बोले माता जी कब गुजरी तो वो तो वही वाली बात हो गई एक आदमी को छुट्टी लेनी थी दफ्तर में गया तो सोचा कैसे छुट्टी लूं तो बोलता बाबूजी छुट्टी चाहिए क्या हुआ बोले माता जी गुजर गई अच्छा अरे मां गुजर गई तब तो जाना ही पड़ेगा जाओ थोड़े दिन के बाद फिर आया वो एक्स्ट्रा छुट्टी लेता था बाकी नॉर्मल छुट्टी तो कटवाता ही था एक्स्ट्रा छुट्टी लेने में इसे झूठ बोलता फिर जब ऐसे अतिरिक्त छुट्टी लेने की बात आई बोले बाबूजी छुट्टी चाहिए क्या हुआ पिताजी चले गए चलो भाई पिताजी गए तो जाओ तीसरी बार फिर आया बोले माताजी चली गई तो छुट्टी देने वाले को तो याद था उस बार नहीं पूछा कुछ भी कहा चलो हो सकता है दो माता होगी इसकी जाने दो चौथी बार जब आए बोले पिताजी गुजर गए अब उससे नहीं रहा गया बोले पिता तो दो नहीं हो सकते माता तो चलो दो होगी बोले ये बता तुम्हारे पिताजी तो पहले गुजर चुके थे अब कैसे हो गया बोले ऐसा हुआ जब माताजी गुजर गई तो पिताजी ने दूसरी शादी की इसलिए दूसरी माताजी गई जब दूसरी माता पिताजी चले गए तो दूसरी माता ने फिर तीसरी शादी की तो पिताजी दूसरे आ गए ना तो उसके न कभी पिताजी खत्म होने वाले थे न माताजी खत्म होने वाले थे तो छुट्टी लेने से मतलब था तो जब हमें कर्म नहीं ही करना है तो उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कहा मृता मोहमयी माता ये मोह में डालने वाली कौन है माता बोले अविद्या रूपी जो माता है वो मर चुकी है पूछता है कब मरी बोले रोज मरती है मरी है मृता का जल नहीं गई है अभी अंत्येष्टि क्रिया नहीं हुई है केवल मरी है और रोज मरती है कहते यदि उसकी अंत्येष्टि क्रिया हो जाए अविद्या यदि समूल नष्ट हो जाए तू जो अभी हमसे पूछ रहा है ना कि आप कुछ करते हो कि नहीं करते ये भी हमें सुनाई नहीं देता ये अभी हमें सुनाई दे रहा है कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे अच्छे का भी पता लग रहा है बुरे का भी भान हो रहा है इसका मतलब है माताजी तो मर चुकी है लेकिन उसकी अभी अंत्येष्टि क्रिया नहीं हुई है मृता मोहमयी माता एक तो ये सूतक क्योंकि गुजरने पर भी सूतक लगता है और किसी के पैदा होने पर भी सूतक लगता है इसको बोलते हैं एक होता है जनना शौच और एक होता है मरणा शौच मरण होने पर होने वाला अशौच इसी को सूतक बोलते हैं और जनना शौच किसी के उत्पन्न होने पर जन्म होने पर घर में कोई बालक आता है तो उतने दिन तक के लिए 12-13 दिन का जो नियम होता होगा अपना अपना मंदिर में नहीं जाना, पूजा पाठ भी दूसरे को सौंप देते हैं, तो इसको बोलते हैं जनन, जन्म होने पर अशौच, जननाशौच मरणाशौच। केवल लोग समझते हैं कि श्राद्ध काल में ही श्राद्ध होता है, विवाह में भागवत आदि यज्ञ में भी नांदी श्राद्ध कराया जाता है, ताकि उस समय कोई अपने कुल गोत्र में गुजर जाए तो उसमें विघ्न ना आवे, वो कार्य आगे चलता रहे, तन निमित्तक पितरों की प्रसन्नता के लिए वह श्राद्ध हम पहले करवा देते हैं, इसलिए नांदी श्राद्ध कराया जाता है। तो यदि कदाचित कोई गुजर गए बीच में तो वो कर्ता तो नहीं बनेगा, लेकिन जो अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था वो पूरा हुए बिना नहीं रुकेगा, वो तो होगा ही, इसके लिए नांदी श्राद्ध करा देते हैं। ग्रहण काल में भी सूतक लगता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा हमारे दैनिक जीवन देने वाले, सूर्य के द्वारा पुष्टि मिलती है, चंद्रमा से भी तृप्ति मिलती है, और इन्हीं दोनों को जो है राहु ग्रस्ता है, पूर्णिमा में चंद्रमा को, अमावस्या में सूर्य को, इसलिए सूर्य ग्रहण में शायद 12 घंटे पहले सूतक लगता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले, और ग्रहण पूरा होने के बाद जब मोक्ष होता है तब जाके शुद्धि होती है। जननाशौच मरणाशौच, तो माताजी गुजर गई ये तो हो गया मरणाशौच, मृता मोहमयी माता, जाता बोधमय सुतः, और बेटा पैदा हो गया। अब बताओ ज्ञानी है बोल रहे बेटा पे, उसकी बड़ी जिज्ञासा कौन सा बेटा पैदा हुआ, बोले रोज ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। हाँ, ब्रह्माकार वृत्ति बनना ही क्या है, बेटा उत्पन्न होना, और अविद्या की जो निवृत्ति है रोज के रोज, यही है माता जी का मरना। तो ये पैदा होना मरना जब तक चालू रहेगा तब तक कभी अशौच की समाप्ति होगी नहीं, और इसी अशौच के कारण मैं कुछ करता नहीं हूं, पूरे जीवन में अशौच लगा हुआ है। पातक द्वय संप्राप्ति, ये दोनों प्रकार के जो पातक लगे हैं, इसलिए कथम संध्या उपासमहे, मैं कैसे संध्या करूं। न वर्णा न वर्णा श्रवाचार धर्मा, ये जो बोला जा रहा है इसमें कम से कम पहले इतना तो अभ्यास करना ही चाहिए सबको, और ये हमें नहीं हो पाता, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में कहा ज्ञान के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति जब अपने स्वरूप में स्थित होने लगते हैं, स्वरूप में स्थित होना और उससे पूर्व की जो स्थिति है दोनों में क्या फर्क है, ये आप लोग ध्यान देकर के सुनिए। ज्ञान में स्थित हो जाने के बाद साधन और फल का जो आश्रय है उसका पूरा परित्याग हो जाता है। संसार जो चल रहा है साधन और फल के आश्रित रह करके, दुनिया कैसे चल रही है, साधन और फल अर्थात कार्य और कारण, कार्य कारण भाव पूर्वक ये संसार चल रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कुछ काम कर लेवे और उसके बाद इसका परिणाम हमें कब मिले ये इच्छा न होती हो, ऐसा कोई है, हो सकता है क्या? कुछ भी करते हैं हम लोग तो काम करने के बाद भी यदि तुरंत भी नहीं मिला तो हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं, देखो भाई हमने तो अपना काम कर लिया, आज देखो कल देखो कभी न कभी तो परिणाम आएगा, इस आश में हम लोग रहते हैं। ये जो कार्य कारण भाव में जो आग्रह भाव है, आग्रह बुद्धि है, तब तक हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते। कार्य कारण भाव ऐसा ही है कि हमने आपके लिए किया, आप भी हमारे लिए कुछ करो, ये भी कार्य कारण भाव ही आएगा। हां, आजकल जो एक बहुत बड़ी बात है, लोगों में कार्य कारण का भाव समाप्त तो हो रहा है लेकिन वो अज्ञान पूर्वक हट रहा है, ज्ञान पूर्वक नहीं, अज्ञान पूर्वक ये हो गया, अरे भाई सरकारी नौकरी मिल गई, काम करो न करो वेतन तो मिलना ही है, ये क्या है, कार्य करो न करो का कारण हो चाहे न हो फल तो मिलना है, टैक्स भरो न भरो भरने पर भी यही कहेंगे कि चोर है फिर भी चुराता है, इनको दो ना दो क्या फर्क पड़ता है। इतने सब होने के बावजूद भी ये हम अज्ञान पूर्वक कार्य कारण का भले ही निषेध कर लें, लेकिन एक सबसे बड़ा जो कारण है जिससे संसार का पूरा कार्य चल रहा है वह है अर्थ पिशाच। सबसे बड़ा क्या है? अर्थ पिशाच, अर्थ की सिद्धि। ऐसा एक है जहां पर किसी की नहीं चलती, ऐसे अर्थ के बल पर प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, दुनिया की कोई ऐसी भी शक्ति नहीं जो ढीली न पड़ जाए। इसमें हम लोग अभी कार्यकारण के भाव को लेकर के आग्रहित हैं, आग्रहवान हैं, लेकिन बाकी चीजों में लगता है क्या फर्क पड़ता है, करो न करो। पांडित्यम निर्विद्या अथवा लेन तिष्ठासीन, ये थोड़ी भूमिका ऐसे बना देते हैं कि पांडित्य भी है, निर्विण भी हो गया, संसार से उपरत हो चुका है और बालक के भाव में रहता है। बल एव बाल, जिसके पास कोई बल हो वही यहां पर बालक है। दुनिया में जो लोगों के पास बल है, परिवार का बल, धन का बल, लेकिन जो ज्ञान में स्थित हो चुका है वो तो इन बलों का परित्याग कर चुका है, उसका बल है एक बल तो निर्बल के बल राम। परमात्मा को ही जिसने अपना आश्रय मान लिया वही व्यक्ति साधन और फल के आश्रय का परित्याग कर सकता है, और ये होना बहुत कठिन काम है, करना तो यही पड़ेगा। तथैव योषनायेति परमात्मा पिशब्दितः तस्य निष्ठा विधानार्थम बाल्येन इति परम वचः अथ बाल्येन तिष्ठासेत। ज्ञानी की हम पहचान कैसे कर पाएंगे ये जरा समझने वाली बात है, ये तो उतना ही कठिन काम है जैसे उदाहरण दिया आकाश के मार्ग से उड़ करके आने वाले पक्षी किस दिशा से उड़ करके आया, कौन से दिशा में उड़ रहा था, ये हमें ज्ञात नहीं हो सकता, पता नहीं चल सकता, क्योंकि उस पक्षी के कोई पद चिन्ह हमें दिखाई नहीं देते। जले बारी चरस से जल में रहने वाले मछली आदि जो जल जंतु हैं वो भी किधर से चल करके आए, उसके भी कोई पैरों के चिन्ह दिखाई नहीं देते। शकुनी नाम इवाकाशे जले बारी चरस से पदम यथा न दृश्येत तथा ज्ञान बताव गति ही, जैसे इनके पदचिन्ह नहीं दिखाई देते वैसे ज्ञानियों के भी कोई पदचिन्ह दिखाई नहीं देते, फिर कैसे देखेंगे, करना तो है कुछ न कुछ। हम सोचते हैं गुरुजी को हम ढूंढें और शास्त्र कहता है कि अपने अंदर ऐसी योग्यता लाओ कि गुरु तुम्हारा चयन स्वयं कर लेंगे। कई बार लोगों को मैं देखता हूं कई चीजों का टेंशन, घर में आप बीमार पड़ जाओ, बहुत कम लोग होंगे जो चाहेंगे कि ये स्वस्थ हो जाए, दोबारा से हम लोगों के व्यवहार में आ जाए, मतलब अब पड़ गया तो अब जाने ही वाला है ये मान लेते हैं, और जाने वाला है तो ये छोड़ के किसके लिए जाएगा, किसको दिया है, किसी को नॉमिनी किया कि नहीं, कुछ लिखा पड़ी हुई कि नहीं। प्रायः सब इसी बात की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, जाने वाला तो जाए, ये नहीं समझते कि जिस चीज की हम चिंता कर रहे यही बारी अपनी भी आएगी। कई बार लोग उपदेश देते हैं, अरे जीते जी कुछ कर लो जो करना है, बाद में क्या होगा, और उससे पूछे कि तू क्या अमर रहेगा, तुमने कर लिया कि नहीं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरे को उपदेश देने में बड़ा अच्छा लगता है। ज्ञानी की एक पहचान हो सकती है, वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातुमर्हति नु वितर्क। बड़े आश्चर्य की बात है, ऐसे ज्ञानियों की पहचान करना, कोनु विज्ञा, अरे कौन जान सकता है भला, कैसे होते हो वज्रादपि कठोराणि, जब समय आता है तो वज्र से भी बढ़ के कठोर हो जाते हैं, और ऐसा नहीं कि हमेशा ही कठोर रहते हैं। मृदुनी कुसुमादपि, फूल से भी बढ़कर के कोमल भी हो जाते हैं। और लोकोत्तराणाम चेतांसी, हम लोगों का चित्त तो लौकिक चित्त है, लोक के अनुसार बर्ताव करते हैं, और उनका चित्त कैसा होता है, लोक से हट करके परे लोकोत्तर। ऐसे महापुरुषों के चित्त को जानना बहुत ही कठिन है, तो लोहे के चने चबाने के बराबर है। भगवान कृष्ण के लिए कहा जाता है कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु कौन है? भगवान कृष्ण है। उनकी जगद्गुरुता का क्या परिचय है? पूरे महाभारत आदि आप पढ़िए, भगवान कृष्ण के जहां भी चरित्र आया हो, भगवान कहीं रोए आप लोगों ने देखा सुना है? नहीं रोए कभी? हाँ, सुदामा के सामने, यशोदा जी के सामने, वो रोना रोना नहीं हुआ ना, वो तो बाल लीला थी। बाद में बड़े होने पर कभी रोए? कृष्णम वंदे जगद्गुरु की बात, राम जी को भी एक तरफ रखो, कृष्णम वंदे जगद्गुरु, अपने ही सामने सबको मरवाया, यदुकुल का संहार करवाया, कभी रोए नहीं। यहां तक कि जो कथा आती है, आप लोग बहुत सुने वो कथा, दुर्योधन के लिए भगवान ने जब ऐसा किया था ना कि अरे मां के सामने ऐसे क्यों जा रहा है, तो उस समय क्या हुआ था? क्योंकि भगवान तो इस बात को जानते हैं कि एक को बचाने के चक्कर में बाद में बहुत लोगों का नुकसान होगा, इसलिए इसको मरवाना ही ठीक है। और भगवान अपने लिए कहते हैं द्यूतम छलयताम अस्मि, मैं क्या हूं? जुआ में मैं छल, छलयताम द्यूतम, ऐसा भी हो सकता है छलने वाले, जुआ जब भी कोई खेलेगा तो छल कपट पूर्वक ही खेल होता है। ये महाभारत इतना बड़ा कांड हुआ और भगवान के लिए गांधारी ने इतना आवेश में आकर के क्या क्या नहीं बोल दिया। क्या गांधारी ने अपने जीवन में गलती नहीं की थी? इतना त्याग, इतनी तपस्या, परिणाम क्या निकला? त्याग तपस्या भी निस्वार्थ हो तब तो फल अच्छा मिलेगा, यदि स्वार्थ के लिए किया जाएगा तो इससे फिर उल्टा फल मिलता है। जिस समय गांधारी के हाथ मांगने के लिए कौन गए थे? भीष्म। गांधारी ने दरवाजे के पीछे खड़े होकर के सुना था जो हाथ मांगने वाला आया क्या क्या बोल रहा है, उसी में पता चल गया कि जिसके हाथ में मेरा हाथ देने दिया जाने वाला है वो होने वाले पति जन्मजात अंधे हैं। मुझे लगता है गांधारी ने वहीं से पट्टी बांध ली थी, या धृतराष्ट्र को देखने के बाद पट्टी बांधी, पहले बांध ली थी, ऐसा ही है। इतिहास पढ़ो तो ऐसा ही मिलता है, बाकी आप वहां रहे होंगे तो आपको ज्यादा पता होगा। पट्टी बांध के आती है धृतराष्ट्र के लिए, इतना बड़ा त्याग, होने वाले पति यदि अंधे हैं तो मैं क्यों दुनिया को देखूं, इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है? लेकिन मन में भाव क्या आ गया? स्वार्थ आ गया। दिन रात भगवान कितने बार आए होंगे, गए होंगे, इतना तो कर सकती थी ना, एक दिन पट्टी खोल के देख लेती भगवान कैसे हैं, दर्शन तो कर लेती। सूरदास जी की आंखें नहीं है फिर भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और इनको देखो आंखें होने पर भी करने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि उस पट्टी के खोलने के बाद इतना तेज संचित हो गया था, उस तेज के प्रभाव से दुर्योधन के शरीर में जो है ना पूरे कठोरपना, वज्र जैसा शरीर हो जाएगा, ये गांधारी को पता था। आज दुरुपयोग करने जा रही है। जो व्यक्ति अपने तप को परमेश्वर के लिए अर्पित नहीं करता तो परमेश्वर उसका उल्टा फल कर देते। देखने में तो लग रहा है भगवान ने छल किया, कपट किया, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। भगवान तो एक पंथ दो काज भी तो करना चाहते थे ना, बहुत सारा उद्देश्य था उनका। दुर्योधन जा रहा है निर्वस्त्र होकर के, भगवान ने रास्ते में रोक करके कहा, दुर्योधन तेरी उम्र क्या है? उस समय क्या आयु रही होगी दुर्योधन की? जो भी हो 12 साल से ऊपर का तो रहा होगा। बोले 12 वर्ष से नीचे उस बालक से कुछ भी हो जाए, अपराध भी हो जाए तो उसको पाप लगता है। अणिमांडव ऋषि ने जो धर्मराज को बताया था ना, एक तितली को जो झाड़ू के सीख घोपने से जो सूली पर चढ़ा दिया, तो उस समय उन्होंने पूछा था मेरी आयु कितनी थी, तो कहा 12 वर्ष से नीचे वाले को, ये आजकल जो चल रहा है ना बाल अपराध, कितना कर दिया, 18 साल, 12 साल माना गया इसे शास्त्र के हिसाब से। तू 12 वर्ष से ऊपर का हो चुका है, ऐसी स्थिति में मां के सामने कम से कम उस अंग को तो ढक के जाना चाहिए जो लोक लज्जा के लिए आवश्यकता है, आवश्यक है। दुर्योधन उस अंग को ढक के जाता है, गांधारी पट्टी खोलती है। अब गांधारी को जो क्रोध आया, बोले दुर्योधन तुमने ये क्या किया? मुझे लगता है रास्ते में कालिया तो नहीं मिला था, भगवान सुन रहे सब कुछ, भगवान भी समय की प्रतीक्षा कर रहे कि अभी जो होना हो जाने दो, बाद में जाएंगे। अब गांधारी ने आवेश में आकर के कह दिया, ये कालिया जैसे अंदर बाहर से काला हो, इसे अंदर से भी हमारे खानदान को चौपट करने पर तुला है, जाओ मैं भी श्राप देती हूं, इसके वंश का भी ऐसा ही सत्यानाश होगा। भगवान बोलते आहा कितना अच्छा हो गया, आप सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, यदि भगवान अपने हाथ से यदुकुल का संहार करते कराते तो लोग बोलते देखो भाई शास्त्र कहता है विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम, अपने हाथ से यदि अनजाने में जहर का भी पेड़ लग जाए और बाद में मालूम पड़े कि यह जहरीला वृक्ष है, फिर भी हम उसको नहीं काटते, भगवान ने अपने वंश का सत्यानाश स्वयं करवाया, ये कैसे? इस आरोप से बचने के लिए भगवान ने मानो गांधारी के मस्तक पर ठिकरा फोड़ा। अब सामने गए, गांधारी का क्रोध शांत हो चुका था, भड़ास निकाल लिया था। जब भगवान गए तो गांधारी ने अब दर्शन किया ना, पट्टी तो खोली लिया, भगवान के दर्शन करने के बाद कितना उसके चित्त शुद्ध हो चुका है। अब उसको अपने किए पर ग्लानी हो रही कि मैंने ये क्या बोल दिया। वो बोलती है कि हमने आवेश में आकर के श्राप दिया, मैं इसको वापिस लेती हूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं आपने जो किया वो ठीक है, उसको इसे ही रहने दो, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर आपको कहूंगा, आपने जो गुस्से में आकर के ऐसा बोला, ये क्रोध आपने पहले तो नहीं कभी किया, इससे पहले कई बार दुर्योधन आपके पास आया आशीर्वाद लेने के लिए, आप क्या बोलती थी, यतो धर्मस ततो जया, यतो धर्मस ततो जया, जहां धर्म है वहीं पर जय विजय। अब आपको तो पता है धर्म किधर है और अधर्म किधर है, धर्मोपि अधर्मायते, जब व्यक्ति धर्म और अधर्म के ऊपर हो जाता है ना, इससे ऊपर उठता है, जैसे याज्ञवल्क्य जी कल बोल रहे थे हम ऊपर उठना चाहते हैं, बोलना बहुत आसान है, इससे ऊपर उठने के लिए थोड़ा प्रयास तो करना ही पड़ता है ना, ऐसे तो होगा नहीं। ऐसे भगवान अपने कुल के संहार कराने के लिए चाहे गांधारी के श्राप को निमित्त बनाया अथवा अभिमन्यु आदि के चक्रव्यूह में जाकर के फंसना, अपने ही सामने द्रौपदी की विपत्ति, कुंती की विपत्ति, पांडवों की विपत्ति, देवकी की विपत्ति, वसुदेव जी, कौन ऐसे नहीं हुए जिनको स्वयं को भी तो जन्म जेल में ही लेना पड़ा। इतने सब कष्टों को झेलते हुए भी भगवान ने कभी क्रंदन किया, रुदन किया, ऐसा हमें दिखाई सुनाई तो नहीं देता। तब जाकर के होते हैं कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वसुदेव सुतम देवम एको देव देवकी पुत्र एव, यदि पुत्र है तो कोई एक देवकी पुत्र ही है, नाम है तो वैसे कृष्ण नाम ही है। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, यदि कर्म भी है तो कुछ उनकी सेवा ही सब कुछ है, बाकी तो ऐसा है जिन लोगों को ऐसा भाव नहीं बनता वो तो बोलते अरे तुम अपने कृष्ण को मानते हो, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उनको आप लोग भगवान मानते हो, हमारे धर्म के बारे में, भगवान की उपासना आराधना के बारे में जो लोग उस परमेश्वर के प्रताप को नहीं जानते वही लोग अनर्गल बातें करते हैं, एक दूसरे को बरगलाते हैं, भड़काते हैं। वास्तव में कृष्ण की तुलना कौन कर सकता है। अभी कल परसों बात चल रही थी कि आजकल सबको जो है ना वो कई जगह ट्रांसलेशन किया इंग्लिश में, भगवान कृष्ण को बोलते राधा जी का बॉयफ्रेंड और राधा जी उनकी गर्लफ्रेंड। अब ये ट्रांसलेशन जो आज के नए जनरेशन पढ़ेंगे वो क्या सीखेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि तो पहले से मारी गई है, और ऐसे ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे तो क्या सीखेंगे कि हम भी ऐसे ही बॉयफ्रेंड बनाए या गर्लफ्रेंड बनाए, या हर लड़की अपने को राधा मानेगी और हर लड़के अपने को कृष्ण मानेंगे, भले ही एक किलो के थैला भी दिन भर उठा के न रख पाए। भगवान कृष्ण तो एक हफ्ता गोवर्धन पर्वत को उठा के रखे थे, उस समय कृष्ण बनने की बात आएगी तो हैं वो तो वो कर सकते हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं। अब जिसको नशा करना है, अरे शंकर जी ने भांग पी, गाजा पी, हम भी तो पी सकते हैं। शंकर जी ने तो कालकूट जहर भी पिया है, गले में धारण करके रखा है, तू कुछ करके दिखा। ऐसे लोग बनने के लिए घूम रहे राधा और कृष्ण, उनके हम उनके बारे में कुछ बोलना, उनके ऐसी चीजों की नकल करना जो अपना ही नुकसान हो जाए। वो समर्थ है, उनके लिए सब कुछ ठीक है, परमात्मा स्वरूप है, लेकिन लोगों को कौन समझावे। इसलिए तो सत्संग करने से सब समाधान होता है, नहीं तो लोग उल्टा सीधा अर्थ निकाल करके अपना नुकसान कर लेते हैं। कृष्णम बंदे जगद्गुरुम तब कहलाए कि वज्र से भी बढ़ के कठोर हो जाते हैं, चाहे कंस को मारना अपने मामा को मारते भी हैं, दुशासन आदि जो भी हुए, शिशुपाल का वध किया भगवान ने, ऐसे कहीं पर वज्र के समान कठोर, पांडवों के लिए फूल से भी बढ़ के कोमल, कुंती के सामने कैसे हो जाते हैं, यशोदा जी के सामने जैसे रोते भी हैं, ये सब उनके सुकुमारता कोमलता का परिचय मिलता है। ऐसे ज्ञानियों की पहचान तो हम कर नहीं सकते, वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है, उसमें जो स्थित हो ऐसे महापुरुष जब दिखाई दे, आग्रह बुद्धि से रहित, राग द्वेष से रहित, आए तो वेलकम, गए तो भीड़कम, ऐसी परिस्थिति में जो रहे, बस समझ लेना चाहिए यही ज्ञानी हो सकते, और कौन होगा। और भी क्या क्या है इसका फिर विचार कल करेंगे। हरिओम।